आत्मभावना लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोये सौवसाहून। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह आत्मभावना नामक शास्त्र है जो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समाधि तंत्र ग्रंथ पर के प्रवचन है। अभी हम समाधि तंत्र की जो पांचवी गाथा है सूक्त श्लोक उसको पढ़ने जा रहा है। समाधि तंत्र पुस्तक निकालना पृष्ठ संख्या है 14। श्लोक 14 पर है ना पांचवा। आपके पुस्तक में कोई ये समाधि तंत्र सब में समान है ना? ये पुरानी पुस्तक होगी तो देख लेना जरा। पांचवा नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हाँ देखते देखो उसके ऊपर लिखा है तत्र बहिरंतर परमात्मनाम प्रत्येकम लक्षणम आह। पहले तो तीन प्रकार के है इतना बताया था कि सभी जीवों में तीन प्रकार के ये जो जीवों के भेद पाए जाते हैं बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। अब कहते हैं उनके सबके एक एक के लक्षण यहाँ बताएंगे। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मल। देखो उसका अर्थ देखते हैं नीचे। ये अन्वयार्थ है पृष्ठ संख्या 15 पर मिला ना। शरीरादौ जातात्म भ्रांति ही बहिरात्मा। शरीरादिमा जेने आत्म भ्रांति उत्पन्न थई छे। जात एने उत्पन्न हुई आत्म भ्रांति। हम कहते ना यथा जात रूप जैसे जन्मे हुए बालक तो जात ने जन्म हुआ यानी यहाँ तो उत्पन्न हुई इस अर्थ में लेना। शरीर आदव यानी शरीर आदि में जेने आत्मभ्रांति उत्पन्न थई छे ते बहिरात्मा छे। आत्मभ्रांति यह मैं हूँ ऐसी उल्टी मान्यता उसको आत्मभ्रांति कहेंगे। चित्त दोषात्म विभ्रांति ही अंतर। विभ्रांति वहाँ है यहाँ विभ्रांति डाला है। आपके पुस्तक में क्या लिखा है? विभ्रांति चाहिए। अच्छा श्लोक में विभ्रांति लिखा है और यहाँ विभ्रांति ही लिखा है तो चित्त दोषात्म विभ्रांति ही अंतर। चित्त इन्हें विकल्पों रागादि दोषों अने आत्मा इन्हें शुद्ध चेतना द्रव्यना विषय मां जेने भ्रांति नथी अर्थात जे चित्त ने चित्त रूपे दोषों ने दोष रूपे अने आत्मा ने आत्मा रूप जाने छे ते अंतरात्मा छे। ऊपर भ्रांति थी और ये चित्त दोष और आत्मा की विभ्रांति है। भ्रांति से उल्टा अति निर्मल परमात्मा जे सर्व कर्ममल थी रहित अत्यंत निर्मल छे ते परमात्मा छे। सभी कर्ममल ने क्या क्या लेना है? हाँ तीनों कर्ममल से रहित यानी द्रव्य कर्म में आठों कर्म आ गए और फिर भाव कर्म मोह राग द्वेष आ गए, नौ कर्म शरीर वाणी मन वगैरह सब। ठीक है, शरीर आदिमा, शरीर मा अने आदि शब्द थी वाणी अने मन नुज ग्रहण समझवू, तेमा जेने आत्मा एवी भ्रांति उत्पन्न थई छे ते बहिरात्मा छे। यह मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसी आत्म भ्रांति हुई है। अंतर्भव अथवा अंतरे भव ते आंतर अर्थात अंतरात्मा, ते अंतरात्मा केवो छे, ते चित्त दोष अने आत्मा संबंधी भ्रांति विनानो छे। चित्त एटले विकल्प, दोष एटले रागादि, अने आत्मा एटले शुद्ध चेतना द्रव्य। तेमा जेनी भ्रांति नाश पामी छे ते, यानी जिसको उसका जैसा रूप है वैसे उसको जान रहा है, उस संबंधी भ्रांति जिसकी मिट गई है, ऐसा जीव लेना है यहाँ पर। अर्थात जे चित्त ने चित्त रूपे, दोष ने दोष रूपे, अने आत्मा ने आत्मा रूपे जाने छे ते अंतरात्मा छे। अथवा चित्त अने दोषों मा आत्मा मानवारूप भ्रांति जेने जती रही छे, निकल गए, ते अंतरात्मा छे। परमात्मा केवा होय छे? अति निर्मल छे, अर्थात जेनो अशेष कर्म, अशेष ने समस्त, कुछ बाकी नहीं रखा है, नाश पाम्यो छे ते परमात्मा छे। भावार्थ, जे शरीरादि बाह्य पदार्थों मा आत्मानी भ्रांति करे छे, यानी उसको आत्मा मानता है, लिखा है कि तेने ज आत्मा माने छे ते बहिरात्मा छे। विकल्पो रागादि दोषो अने चैतन्य स्वरूप आत्माना विषय मा जेने भ्रांति नथी, अर्थात जे विकार ने विकार रूपे अने आत्मा ने आत्मा रूपे एक बीजा थी भिन्न समझे छे ते अंतरात्मा छे। ते शब्द रह गया यहाँ पर, जे रागादि दोषो थी सर्वथा रहित छे, अत्यंत निर्मल छे अने सर्वज्ञ छे, ते परमात्मा छे। इसको दूसरी भाषा में जो निर्दोष है और जो निरावरण है वो परमात्मा है। विशेष बहिरात्मा, जे शरीर आदि, आदि में वाणी मन सबको ले लिया, जे शरीर आदि अजीव छे तेमा जीवनी कल्पना करे छे, तथा जीव मा अजीवनी कल्पना करे छे। यानी उसको तो जीव अजीव का भेद पता नहीं है, हाँ तो यही जीव है मान लेता है अचेतन को, या जीव कोई अचेतन मान लेता है, जीव कोई शरीर मान लेता है। दुखदायी राग द्वेषादि विभाव भावों ने सुखदायी समझे छे। देखो रागादि तो प्रकट दुखदायी है, रागादि प्रकट ये दुख देना, और क्या कहते सुखदायी समझे छे। तीन ही को सेवत गिनत चे, छड़ाला में लिखा है ना, ज्ञान वैराग्यादि जे आत्मा ने हितकारी छे तेने अहितकारी जानी तेमा अरुचि या द्वेष करे छे। शुभ कर्म फल ने सारा, यानी शुभ कर्मों के यानी प्रशस्त कर्मों के उदय में उसके कुछ अनुकूल सामग्री मिलती है तो कहते वो अच्छा है। तो कहते शुभ कर्म फल ने सारा, यानी शुभ कर्म के फल को अच्छा मानता है, अने अशुभ कर्म फल ने बुरा मानी ते प्रत्ये राग द्वेष करे। शरीर नो जन्म थता पोतानो जन्म अने तेनो नाश थता पोतानो नाश माने छे ते मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा छे। यानी इसको कर्म के फल में अच्छा बुरा मानता है, क्यों मानता है इष्ट अनिष्टता, क्योंकि वो शरीर से लगते हुए जो पदार्थ है, हाँ तो शरीर मैं हूँ, तो उसके लिए फिर उसने अनुकूल और प्रतिकूल सोच लिया। अने कुछ पदार्थ कुछ संयोग अच्छे कुछ बुरे मानकर उसके प्रति राग द्वेष करता रहता है, ये बहिरात्मा का लक्षण बताया। वरी आ शरीरादि जड़ पदार्थों प्रगटपने आत्मा थी जुदा छे, क्योंकि बता ये लक्षण जुदा है उनका, ये तो अचेतन है और मैं तो चेतन हूँ। ते कोई पदार्थो आत्माना नथी, आत्मा थी पर ज छे ने भिन्न छे, छता एने इंस्पाइट फिर भी तेने पोताना मानवा, तेमज शरीर ने बोलवा चालवा वगैरह ने क्रिया हूँ करूँ छूँ, मने तेना थी लाभ अलाभ थाय छे, आ शरीर मारू, हूँ पुरुष, हूँ स्त्री, हूँ राजा, हूँ रंक, हूँ रागी, हूँ द्वेषी, हूँ धोड़ो, द्वेन में गोरा, हूँ काड़ो। देखो क्या क्या, फिर हम पेज पलटने के पहले जरा देख लेते हैं। इसने शरीर आदि में आत्मबुद्धि की, तो शरीर की क्रिया मेरी है, शरीर की जो पर्याय है उसके जो वर्ण आदि, मैं उस रूप हो गया ऐसा मानता है, तो मैं गोरा मैं काला ऐसा तो मानता ही है। अब कहते शरीर की अनेक क्रिया होती है, ये बोलना, ये जो शरीर की, यानी शरीर की भी मूवमेंट हो रही है, वहाँ वाणी जो भाषा वर्गना का कार्य हो रहा है। तो कहते कि शरीर ने बोलवा चालवा वगैरह नहीं क्रिया, शरीर की जो जो क्रिया हो रही है वह मैं कर रहा हूँ, इसे इसके मान्यता है, मानता भी है, मैं हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ ना। देखो जीव निकल जाता है तो शरीर की क्रिया कहाँ होती है, दलील भी ऐसा ही देता है, तो जीव ही उसकी क्रिया कर रहा है, ये उसकी मान्यता है। मने तेना थी लाभ लाभ थाय छे, यानी शरीर की क्रिया करने से मुझे लाभ होगा, ये उसकी मान्यता है। वो उसकी क्रिया मैं कर ही नहीं सकता, फिर भी क्या मानता है, शरीर की ऐसी अमुक क्रिया करने से मुझे फायदा होगा। आ शरीर मारू, मरण मेरा, और फिर मैं स्त्री, मैं बच्चा या पुरुष, मैं स्त्री हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, धोड़ो हूँ, कालो, एम बाह्य पदार्थों थी पोताना आत्मा ने भिन्न नहीं जानतो, यानी अपने आत्मा को भिन्न जाना नहीं, तो क्या करता है, ते पर पदार्थों ने ज आत्मा माने छे, और पूछता आत्मा होता तो दिखाई देता। अने मोक्ष मार्ग मा प्रयोजनभूत जीव अजीवादी तत्वोना स्वरूप मा भ्रांति थी प्रवर्ते छे, ते जीव बहिरात्मा छे। देखो क्या क्या बातें बताई उन्होंने, शरीर आदि जो अन्य जो अचेतन पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है, पृथक है, वे मैं हूँ ऐसा मानता है। दूसरी बात क्या है कि जो मोक्ष मार्ग के लिए जो प्रयोजनभूत जो कार्यकारी ऐसे जो तत्व बताए हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व आदि, उन तत्वों के बारे में इसके विपरीत मान्यता रहती है, भ्रांति भूल भरी कल्पनाएं रहती है, वह जीव बहिरात्मा है। कैसे भूल भरी भ्रांति है, तो जीव अजीव को तो अभी हमने देखे, जीव को अजीव समझता है, अजीव को जीव मानता है, उल्टा पुल्टा दोनों को, जो एक को नहीं जानता वो दोनों को ही नहीं जानता। हमेशा उदाहरण देते ना, बच्चे को बोला नींबू लेके आओ और उसने संतरा लाया, तो क्या नहीं जानता, नींबू को नहीं जानता कि संतरे को नहीं जानता, दोनों ही नहीं जानता, क्योंकि नींबू समझकर संतरा नहीं लाता है ना। ऐसे जीव अजीव की तो समझ में है। अभी आश्रव के बारे में क्या भूल हो रही है उसकी, आश्रव दुखदाई है, उसको सुख रूप मानता है, आश्रव करते रहने से यानी उसमें से शुभाश्रव करते रहने से मोक्ष मार्ग शुरू होगा, यानी आश्रव से संवर निजरा होगी ऐसा मानता है, ये उसकी भूल है। बंध तत्व में वो शुभ बंधा अच्छा है, अशुभ बंधक बुरा है ऐसा मानता है, यानी ये सारी उसकी खोटी कल्पना है। संवर निजरा के बारे में भी देखा हमने, उसको दुखदायक मानता है, जो सुखरूप है कष्टदायक मानता है, जो हितकारी है उसको अहितकारी मानता है, और मोक्ष जो सच्चा अतीन्द्रिय अनंत सुख है तो उसको लौकिक सुख जैसा, उससे अनंत गुणा वाला सुख मानता है। कहता भी जैसे स्वर्गों में जितना सुख है उससे अनंत गुणा मोक्ष में सुख है, तो स्वर्गों का सुख तो इंद्रिय विषयों का सुख बताया है, तो उसके साथ इसकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। ये उसके सातों ही तत्वों के बारे में भ्रांति चलती है। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति ने लीधे ने उसके कारण पर पदार्थों में यह मैं हूं ऐसी खोटी मान्यता के कारण आज्ञानी जीव विषयोनी चाह रूप दावानल मा। ये दावानल समझते क्या होता है? अग्नि, कौन सा है वो वनवा कहते हैं ना, वो तो जंगल में बड़े बड़े वो तो हाँ कितने महीने महीने चलते रहते, वो जलते रहते। हाँ तो कहते विषयोनी चाह रूप दावानल, इंद्रियों के विषय तो ये इसका ज्ञान का गेय है, परंतु वो मानता है कि मैं इसको भोग रहा हूं और उनके भोगने की तीव्र इच्छा से ये जल रहा है स्वयं। तो ये कौन से अग्नि में जल रहा है? विषयों की चाह, वो मिलने नहीं मिलने दोनों पर इसके तो ये तो जलता तो रहता ही रहता है। देखो क्या कहते हैं, पर पदार्थों में आत्मभ्रांति ने लिधे अज्ञानी जीव विषयोनी चाह रूप दावानल में रात दिन जलतो रहे छे। पर पदार्थों में आत्मा होने से शरीर मैं हूँ और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ चीजें जानने में आती हूँ मैं उसका भोग कर रहा हूँ, उससे मुझे सुख मिल रहा है, ये उसकी मान्यता। आत्म शांति खोई बैसे छे, अति इंद्रिय चैतन्य आत्मा ने भूली। अति इंद्रिय ने इंद्रियों से पार है, तो अति इंद्रिय चैतन्य आत्मा ने भूली, बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छाई जाए छे, अने आकुलता रहित मोक्ष सुखनी प्राप्ति माटे कोई प्रयत्न करतो नथी। सारे प्रयत्न उसके जो लौकिक कहते हैं, दिन में कितने घंटे तो पैसा कमाने के पीछे चला जाता है, पहले इतनी पढ़ाई की वो भी किसके लिए की? पैसा कमाने के लिए की। आजकल के बच्चे इतने सयाने हैं, कौन सी पढ़ाई करना, किसमें ज्यादा मुनाफा है, पहले सोच लेते हैं। हाँ, कम कष्ट और अधिक पैसा ऐसा चाहिए उन्हें। तो उसके लिए हमने पढ़ाई में कितने साल बिताए, एक भाव के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो 3 साल के बच्चे को या उसके भी पहले भी आजकल ट्रेनिंग चालू होती है और दिन के 6-6, 8-8 घंटे तो स्कूल में बिताए, उसका होमवर्क घर में आके किए, उसके परीक्षाएं दी और फिर एक भाव में सुखी होने का प्रयत्न किया। वो होगा कि नहीं होगा वो सबके अनुभव की बात है, यानी उसमें कितनी ईर्ष्या, कितनी क्या क्या, कितनी आकुलता है, तो हमने उसमें से पार होके गए। अब कहते ये जो मोक्ष मार्ग है उसको समझने के लिए हमने कितने घंटे बिताए, ये रोज का डेली 1 घंटा भी हम नहीं निकाल पाते। जो सर्वोत्कृष्ट है, जो भवों का अभाव करने की बात है, उसके लिए हम कितना समय दे सकते हैं, यानी हमने उसको कितनी इम्पोर्टेंस दी। और चाहते तो हम ये उत्कृष्ट फल, मोक्ष जैसा उत्कृष्ट कार्य चाहते हैं, परंतु उसके लिए कितना योगदान दे रहे हैं। कोई भी लौकिक विद्या भी ले लो, कोई कला भी ले लो, जो कोई गायक है, कोई जो वादक है, कोई वाद्य बजाता है, तो उसके रियाज के पीछे यानी भले उसने वो टॉप मोस्ट लेवल प्राप्त की, फिर भी वो कितने घंटे बिताता है। और जो मोक्ष जैसा सर्वोत्कृष्ट कार्य है उसके लिए हम कितना समय दे पाते हैं, यानी हमने उसको कितना इम्पोर्टेंस समझा, ये हमारी इससे ख्याल में आती है बात। तो क्या कहता है, तो अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा ने भूली, बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छाई जाए छे, अने आकुलता रहित मोक्ष सुखनी प्राप्ति माटे कोई प्रयत्न करतो नहीं। और इसको अन्य चीजों में आकुलता करते रहने से टेंशन लेने में उसी मजा आती है। अपने हमने कुछ किया जैसा लगता है उसको। अब अंतरात्मा की बात करेंगे। चैतन्य लक्षण वालो जीव छे अने तेनाथी विपरीत लक्षण वालो अजीव छे, क्योंकि चैतन्य तो जो जीव ही, उसका नाम ही इसीलिए पड़ा है जीवत्व शक्ति, जो चैतन्य उसका लक्षण है, और उसके विपरीत यानी अचेतन लक्षण वाला अजीव है। आत्मानो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा छे, यानी जानना देखना जिसका कार्य है, ये उसका स्वभाव है। अमूर्तिक छे, पुद्गल रूपी है, मूर्तिक है, और ये आत्मा तो अमूर्तिक है, दिखने वाला नहीं, इंद्रियों के द्वारा वो ग्राह्य होने वाला नहीं है। अने शरीर आदि परद्रव्य छे, उद्गल पिंड रूप छे, पिंड है क्योंकि वो तो अनंतानंत परमाणुओं का गोला है, उसका स्कंद बन गया। जड़ छे, विनाशक छे ते मारा नथी अने हूँ तेनो नथी। अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है वो। हमें तो दूसरी लौकी जो चीजें अपने से यानी शरीर से दूरवर्ती है वो तो भिन्न लगती है, पर शरीर इतना भिन्न ये नहीं भासित हो रहा, यही कह रहे हैं। यहाँ पर एवं भेद ज्ञान करनार सम्यक दृष्टि अंतरात्मा छे, अने अकेले ही शरीरादिक से शरीरादिक परद्रव्य छे उसमें तो राग को भी वो तो अपना स्वभाव भाव नहीं है, उसको भी अलग कर दिया। वही ते जाने छे के हूँ देहती भिन्न छू, देहादिक मारा नथी, मारो तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण रूप शाश्वत आत्मा ज छे। बाकी ना संयोग लक्षण वाला एटले व्यवहारिक भावो जे कोई भावो छे ते बधाय मारा थी भिन्न छे। आत्माना आश्रय जे ज्ञान वैराग्य रूप भाव प्रकटे छे ते संवर निजरा मोक्षनुं कारण होई मने हितरूप छे। अने बाह्य पदार्थोने आश्रय जे रागादि भावो थाय छे ते आश्रय बंध रूप होई संसारनुं कारण छे अने मने अहितरूप छे। क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा, जैसे सिद्ध भगवान पहले गाथा में बताया था, पहले श्लोक में जो सिद्धों का स्वरूप है अभी जो पर्याय में प्रकट किया है वो मेरा स्वभाव भाव है। जो सिद्धों में है वो मेरे में है, जो सिद्धों में नहीं वो मेरे में नहीं है, ये तो हमने पहले ही नक्की कर दिया। अब यहाँ क्या कहते हैं देखिए, ऐसा हमने नक्की कर दिया, अपना स्वरूप निश्चित कर दिया, वह मैं हूँ। अब उसके आश्रय से यानी उसी में लीन होने से, उसी को जानते रहने से, उसका आश्रय लेना यानी उसी को जानते रहना, तो क्या होगा? ज्ञान वैराग्य भाव रूप भाव प्रकटे चेते संव निजरा, वो मोक्ष का कारण। और बाह्य पदार्थों को जानते रहने से क्या होता है? उनके आश्रय से यानी उसी में रुचि ले रहा है, उसी में रस ले रहा है, उसी वो अकेला जानना नहीं हो रहा है, राग द्वेष सहित जानना हो रहा है। तो कहते वो रागादि भाव थाय छे, वो आश्रय बंध रूप है, संसार का कारण है, अरे हमारे लिए वो अहित रूप है। आ रीते जीवादि तत्वों ने जेम छे तेम जानी ने जो का त्यों श्रद्धान, यहाँ तो जानी की बात, तेनी साची प्रतीति करी ने, ये श्रद्धा की बात है। छड़ाला में तो उसको जो का त्यों श्रद्धान बताया, तो जो का त्यों श्रद्धान होने के लिए जो का त्यों ज्ञान भी आवश्यक है। पहले उसका सही स्वरूप से जानना होगा, फिर मान्यता उसमें कौन से हितकारी है, कौन से अहितकारी है, कौन से रखने लायक है या प्रकट करने लायक है, कौन से छोड़ने लायक है, ये छूटेंगे तब कभी छूटेंगे, परंतु छोड़ने लायक है ये पहले नक्की करना पड़ेगा। मिथ्यात्व अवस्था में ही इनका सही निर्णय होगा तो सम्यक तो प्रकट होगा। अभी पर्याय में मोह है, राग है, द्वेष है, सब कुछ होते हुए भी वो अहितकारी है ऐसा निर्णय करना, ये लोग तो धर्म के नाम पर क्या निर्णय किया, अशुभ तो बुरा है, ये शुभ अच्छा है, यहाँ तक निर्णय किया, तो क्या उन्होंने आश्रय को अहितकारी माना? आश्रय में से कुछ आश्रय अहितकारी है और कुछ अहितकारी ऐसा मान लिया, फिर पूछते नहीं तो फिर मनुष्य भाव कैसा मिलेगा? आप पुण्य को हेय कह रहे हो, अरे हेय मानने की बात है, जो हेय कह रहा है सात तत्वों का सही स्वरूप समझ रहा है, पुण्य को जो हेय कह रहा है विकल्प की भूमिका चल रही, तो वो उसका शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? वो शुभ भाव ही तो है ना, जो पुण्य को हेय कह रहा है उसको तो अभी पुण्य भाव में अटका है, क्या अभी वो उसी में है? होने योग्य भाव होगे परंतु तो वो छोड़ने लायक है, मुझे आत्मा में स्थिर होने लायक है, शुद्ध भाव में रहने लायक है, ये पहले नक्की होगा। नक्की तो मिथ्या तो अवस्था में नक्की करेगा तब जाके चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। अभी चौथे में भी है, पांचवे में, छठे में भी, कितने उसके तो शुभ भावों की तो और जिसको कहेंगे कषायन की मंदता और बढ़ेगी, उनके शुभ भाव तो और उच्च प्रकार के होंगे। वहां पर शुभ भाव होने की बात नहीं, होने की बात नहीं हुआ, वो छोड़ने का भी नहीं पहले उपदेश है। पहला उपदेश क्या है? वो भिन्न है, वो अहितकारी है, करने लायक नहीं है, ये नक्की करना है, बस इतना ही नक्की करना है। हमने कितनी बार देखा, घर में बेटी पैदा होते ही हमने क्या नक्की कर दिया, ये पराया धन है, कब विदा करेंगे। अरे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल, हाँ 20-22 साल 25 साल तक उसकी बिल्कुल एजुकेटेड करेंगे, हाँ जैसे वो अपने पैर पर कभी प्रसंग आए तो स्वयं पैसा कमा सकती है इस काबिल करके, फिर योग्य वर देख कर फिर उसको विदा करेंगे। नक्की कब किया था? जब पैदा हुई तभी किया था। ऐसे ही पुण्य छोड़ने योग्य है, ये अभी जब पुण्य कर रहा है मिथ्यात्व में तभी अभी नक्की करना। लोगों को लगता है ये कहने से इसने पुण्य छोड़कर पाप में चला जाएगा, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी नहीं होंगे। लौकिक में तो बहुत से आने हैं, उपाधेय नहीं।
हाँ,
वो तो मिथ्या तो नाम को महापाप हुआ। हाँ उपाधेय मानने वाले को तो अशुभ भाव हुआ, क्योंकि वो तो मिथ्या तो अभी गहरा मिथ्या तो पड़ा है अभी, यानी वो उपाधेय पुण्य को उपाधेय मानने वाला, यानी उसकी मान्यता की भूल है अभी, अभी उसको मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा। हाँ नहीं नहीं, भाव तो उसका अशुभ भाव है, मिथ्या तो भाव है।
नहीं, मिथ्यात्व की अवस्था में भी पुण्य को कह सकते हैं, अभी मिथ्यात्व की अवस्था ही है, वो कम से कम शुभ भाव तो होगा,
होने दो ना।
हाँ शुभ भाव ही होगा।
कौन सा?
पुण्य को उपाधि कहना।
हाँ
तो ये प्योर अशुभ
अशुभ। हाँ
और अगर मिथ्यात्व की अवस्था में भी अगर ये कहते हैं कि पुण्य ये है तो ये कम से कम
शुभ भाव होगा, परंतु अभी वो तो केवल कह रहा है कि वो सच्चा मान रहा है, कहने पुरता तो सीख गया, क्योंकि अभी हमने रोज रोज पढ़ के तो हम बोलने के बहुत एक्सपर्ट हो गए है ना। तो वो केवल कहने की बात नहीं, उसके अभी भी अभिप्राय में मान्यता में क्या पड़ा है उसको, ये भी देखना पड़ेगा।
शुभ को उपाधेय और अशुभ को ही ये माना ही नहीं, माना ही है उसने, यानी शुभ और अशुभ में फर्क कर रहा है वो जो ऐसा कह रहा
है, मिथ्या तो है।
हाँ। यानी वो सात तत्वों के बारे में भूले ना उसको, यानी उससे ये अच्छा, उससे ये अच्छा, ऐसा ही यानी
ये अच्छा नहीं, उसकी मान्यता में है कि ये करते रहने से आगे जाके मुझे
संभव अच्छे है ऐसा माना उसने, यानी उसकी मान्यता में मिथ्या तो पनप रहे जोर शोर से। लोग क्या कहते हैं, फॉर द टाइम बिंग तो कम से कम शुभ करना क्या नहीं करना, अरे करना क्या नहीं करना की बात ही कहाँ है। तो आप हमें ये समझाएं कि भूतकाल में जो शुभ भाव है उसको आप कुछ हेरा फेरी मतलब अदर बदल कर सकते हैं जो हो चुके हैं, और जो भविष्य में आने वाले हैं वो, और जो अभी ऑलरेडी पैदा हो गया ये वर्तमान समय में, तो फिर तुम क्या करना चाहते हैं? भविष्य में बदल नहीं पाएंगे, जो होना है वो होना है, भूत में गए वो गए, वर्तमान में अभी वर्तमान में है, यानी वो पैदा हो गए, वो पैदा हो उसको कैसा करता है, और तुम्हारे लिए रुकेगा थोड़ी, एक समय में वो भी नष्ट होना है। यानी हमारी ये जो मान्यता है कि उससे अच्छा वो, ये मान्यता में ही गड़बड़ है। लोग ऐसा ही कहते हैं, अरे जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं, इसका अर्थ वो शुभ भाव करना चाहता है यानी शुभ को अच्छा मानता है, जब भी तो चाहता है, ख्याल में ना?
देखो उपदेश की भाषा में कहेंगे कि तब तक शुभ रूप प्रवर्तन करो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखो, ये श्रद्धा की बात है। आचरण में पाप छोड़ गए, पुण्य छोड़कर पाप करने की बात नहीं करे, आचरण के लिए उपदेश के लिए कहेंगे कि तुम पाप मत करो पुण्य करो उपदेश में, परंतु श्रद्धा में ऐसा रखना चाहिए ये पुण्य है, ये भी बंध का कारण है, संसार का कारण है, ये इससे मेरे छुटकारा नहीं होगा, ये बिल्कुल निकालने लायक है, अहितकारी है, इतना नक्की करना है।
यानी श्रद्धा में हम उसको जो अच्छा अच्छा मान रहे हैं वो तो श्रद्धा में ही हमें पलटा करना है, लेकिन हम उसको आचरण के द्वारा बदलना चाहते हैं। प्रथम में प्रथम तो श्रद्धा में सही बात होनी चाहिए,
यानी किसी आचरण का निषेध नहीं है, व्रत आदि कोई धारण करता है करने दो, परंतु उसकी श्रद्धा क्या है, क्या इससे मेरा कल्याण होने वाला है? व्रत के आचरण रूप जो शुभ भाव है, क्योंकि कोई हमने देखा ना, कोई पहले गुणस्थान से इनडायरेक्ट सातवें में जा सकता है, पहले गुणस्थान से द्रव्यलिंगी पहले मुनि होगी, वो दीक्षा अंगीकार की है, अभी मिथ्यात्व दशा चली है, ऐसे जीव को डायरेक्ट सातवां गुणस्थान प्राप्त तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मान्यता सही की है। मान्यता में ये छोड़ने लायक है, ये शरीर की क्रिया से मेरा मोक्ष मार्ग नहीं होने वाला, ये नक्की किया उन्होंने, यानी उनका तत्व निर्णय सही होगा, तभी तो उनका गुणस्थान सातवां हो सकता है।
देखो, ये बात निश्चित है कि ये मिथ्या दृष्टि पहले नक्की करेगा कि शुभ भाव भी हेय है, वो करने जैसे नहीं है, ऐसा करते हुए छठे गुणस्थानवर्ती जीव भी शुभ भाव कर रहा है, और वो तो तीन कशा की चुकड़ी के अभाव पूर्वक है। ख्याल में है ना, जैसा हम कहते हैं कि उसको हम छोड़नी चाहिए, तो हम तो क्या छोड़ना चाहिए, यानी चाहना ठीक है, लेकिन वो छूटते नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। दसवें गुणस्थान के अंत तक लोप कशा है, कहाँ छूटा है, यानी हमारा जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी दिशा नक्की हो गई है, दशा प्राप्त होगी जब होनी है। हम दिशा में ही गड़बड़ कर रहे हैं और दशा लेके बैठे हैं। एकड़ा बिना मिंडकाल हो गया ना, एक बिना अंक बिना बिंदी। आगे
देखो, ये उपाय क्या है कि जीवादि तत्वों ने जेम छे तेम जानी ने, पहले वो तत्वों के हम नाम सीखेंगे, फिर उसके लक्षण देखेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा सही निर्णय तक पहुंचेंगे कि कौन से छोड़ने लायक है, जिसको हम हेय कहेंगे, कौन से प्रकट करने लायक है, और कौन से अंतिम प्रकट जो मोक्ष है तो पूर्ण प्रकट करने लायक है, परंतु आश्रय करने लायक कौन सा है, तो मैं स्वयं जीव तत्व, इस तरह से इसमें से ही निर्णय करना है हमको। देखो आगे बढ़ेंगे, अभी हम अंतरात्मा की बात, एक पैराग्राफ हुआ था ना, दो पैराग्राफ। अंतरात्मा ना त्रण भेद छे, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा ने जघन्य अंतरात्मा। क्योंकि अंतरात्मा के गुणस्थान कौन से अरविंद भाई? चार से बार, अभी उसमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य हम लगा सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ लिखते हैं, देखो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह थी रहित शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा छे। आ महात्मा सोल कषायना अभाव द्वारा क्षीण मोह पदवी ने प्राप्त करीने स्थित छे। कौन सा है वो? बारवा गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान वर्ती व्रत रहित सम्यक दृष्टि आत्मा जघन्य अंतरात्मा कहवाय छे। आ बेन यानी जघन्य अंतरात्मा अने उत्तम अंतरात्मा नी मध्यमा रहेला सर्वे मध्यम अंतरात्मा छे, अर्थात पांचमा थी अग्यारमा गुणस्थान वर्ती जीवो मध्यम अंतरात्मा छे। इसके लिए उन्होंने नीचे रेफरेंस बताया, जो नियमसार गुजराती आवृत्ति पृष्ठ 301, ग्यारहवें वाले को भी उन्होंने मध्यम कह दिया। हाँ, परमात्मा जेमने अनंत ज्ञान दर्शनादि रूप चैतन्य शक्तियों नो पूर्णपणे विकास करी सर्वज्ञ पद प्राप्त कर्यु छे, ते परमात्मा छे। परमात्मा ना बे प्रकार छे, सकल परमात्मा ने निकल परमात्मा। कल का अर्थ होता है शरीर, शरीर सहित परमात्मा ते अरिहंत परमात्मा छे। निकल ने शरीर रहित परमात्मा छे, वो सिद्ध परमात्मा छे। अरहंत परमात्मा ते सकल परमात्मा छे अने सिद्ध परमात्मा ते निकल परमात्मा छे। तेओ केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय थी सहित छे। तो सकल परमात्मा के भी कुछ भेद है क्या? हाँ बहन, आपको मालूम सकल परमात्मा के भी भेद? अरिहंत परमात्मा कितने प्रकार के हो गए? आप बताना चाहते हैं? सहयोग केवली और अयोग केवली मुख्य दो। वो तो आप मुख केवली वगैरह वो बात करते, उसकी बात नहीं है। हम गुणस्थानों में 13वें गुणस्थान वाले सहयोग केवली, 14वें वाले अयोग केवली, दोनों ही अरिहंत दशा वाले हैं। अरहंत परमात्मा ने, यहाँ पुस्तक में आए लास्ट पैराग्राफ 16वीं पुस्तक पेज है, अरहंत परमात्मा ने चार अघाती कर्मों बाकी छे। ये चार अघाती कर्म कौन से नलिन भाई? तेओ क्षणे क्षणे क्षय थतो जाए छे, तेनो क्षणे क्षणे क्षय थतो जाए छे। तेमने बाहर मां समोसरणादि दिव्य वैभव होय छे, ये तो तीर्थंकर की अपेक्षा। तेमने इच्छा विना भव्य जीवों ने कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटे छे, तेओ परम हितोपदेशक छे। परम अवदारिक शरीरना संयोग सहित होवाथी तेओ सकल कले ने शरीर सहित परमात्मा कहेवाय छे। ये पहले बात आ चुकी है उनकी। जे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि में सभी सभी लेना आठ, रागादि भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष शुभ अशुभ सब भाव ले लेना, अने शरीरादि नो कर्म थी रही छे, शरीर मन वाणी वगैरह शुद्ध ज्ञानमय छे, औदारिक शरीर रहित छे यानी कल रहित छे, ते निर्दोष अने परम पूज्य सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहेवाय छे। औदारिक शरीर रहित क्यों कहा? क्योंकि लास्ट में औदारिक शरीर था अरिहंतों को, वो भी निकल गया है, इसलिए औदारिक शरीर रहित। नहीं तो आप पूछेंगे तो क्या वैकल्पिक शरीर वाले हैं क्या? हाँ, ऐसा नहीं अर्था उल्टा निकालना उसमें। ते वो अनंत काल सुधी अनंत सुख भोगवे छे। एक बार ये सिद्ध दशा प्राप्त हुई है तो अनंत काल तक यही सिद्ध दशा हर समय चलती रहेगी। अनंत काल तक अनंत 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 सुख भोगते रहेंगे। आत्मा मां परमानंद नी शक्ति भरी पड़ी छे। परम आनंद, अनंत आनंद की शक्ति, शक्ति रूप हर समय अनंत काल तक हर समय वो पर्याय में प्रकट होता रहे तो भी स्वभाव में से थोड़ी भी कमी नहीं हो जाती, उसी को तो स्वभाव कहते हैं। तो आत्मा मां परमानंद नी शक्ति भरी पड़ी छे। बाह्य इंद्रिय विषयों मां वास्तविक सुख नथी। इस जीव को उसका विश्वास होता तो बाह्य में क्यों झपटे मारता? उसको बिल्कुल विश्वास नहीं कि मेरे में ही सारा अतीन्द्रिय सुख भरा है और उसी के लक्ष्य करने से वो सुख प्राप्त होगा। यदि सचमुच एक्सेप्ट करता तो बाह्य सुख के लिए कितने प्रयत्नशील है और अंतरंग सुख के लिए कितने, 24 घंटे में प्रोपोर्शन निकालो तो पता चलेगा। हमें हमारे परिणामों से पता चलता है कि हमने किसको सुख माना है। देखो, बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं, एम अंतर प्रतीति करीने, ऐसे अंदर से प्रतीति होगी तो ही जीव अंतर्मुख होगा। धर्मी जीव अंतर्मुख थईने आत्माना अतीन्द्रिय सुखनो स्वाद ले छे। जेम लींडी पीपरना दाने दाने 64 पोहरी तिखाशनी ताकत भरी पड़ी छे। देखो, आपको मालूम है लिंडी पिंपर क्या होते है? काली ऐसे आती है, पिंपड़ी कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ये खांसी वगैरह के लिए आते हैं, ऐसे लंबा इतना सा होता है, इतने लंबे, हाँ मुरेठी, नहीं नहीं ऐसे काला होता है लंबा और वो तीखा उसमें चरपर ही ऐसे चरपराट लगे। आयुर्वेदिक है दवाई, उसको लिंडी पिंपरी कहते हैं। 64 पोहरी, क्योंकि पहले में 64 पैसों का रुपया होता था, इसलिए 64 पोहरी कहते हैं, यानी 100%, यानी उसके दाने दाने यानी उसका एक एक जो जो है वो लिंडी पिंपरी, उसमें 64 पोहरी तिखासनी ताकत भरी पड़ी थी। बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वो घिसने पर वो निकलता है उसमें से, वो चरपरार जो होता है गले में ऐसा कुछ हो जाता है उससे, ये खांसी के लिए यूज करते हैं ना, ये बहुत अच्छी दवाई है ये। तेम प्रत्येक, वो तो हमेशा इसका उदाहरण देते हैं स्वामी जी, तेम प्रत्येक आत्मानो स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान आनंद थी भरेलो छे। जैसे वहां 64 पोरी ने 100% तिखास है, वैसे हमारा ज्ञान आनंद बिल्कुल 100% है, भरेलो छे। कौन तेनो विश्वास करी, क्या कहा है, किसके अनुभव में आएगा, हरेक का आत्मा परिपूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा पड़ा है, लबालब भरा पड़ा है, उसका विश्वास करके। ये तो है कि नहीं है, ये तो हमने देखा, अनुमान से पहले निर्णय होगा, पहले आगम से जानेगा, तत्व का बारंबार विचार करेगा, अनुमान द्वारा वो युक्ति अनुमान सब बातें आई थी, तो कहते फिर तेनो विश्वास करी, अंतर्मुख थई ने तेमा एकाग्र थाय तो ते ज्ञान आनंद नो स्वाद अनुभववामां आवे छे। ए अपने पर्याय में उसका वेदन होता, यानी यही विधि है और कुछ नहीं है। उसका विश्वास लाकर हम कहेंगे नहीं नहीं भगवान ने बताया हमारा विश्वास है, वैसा विश्वास नहीं, बिल्कुल सही निर्णय तक पहुंचना चाहिए उसको। आत्मा थी भिन्न बाह्य विषयों में क्या आत्मा नो आनंद नहीं, धर्मात्मा, धर्मात्मा ने धर्मी आत्मा एने सम्य दृष्टि जीव, पोताना आत्मा सिवाय बाहर मां क्या स्वप्न माए आनंद मानतो नहीं, यानी अन्य चीजों में कहीं उसके आनंद की कल्पना ही नहीं उसकी। आओ अंतरात्मा पोताना अंतर स्वरूप में एकाग्र थई ने परिपूर्ण ज्ञान आनंद प्रकट करीने पोते ज परमात्मा थाय छे। ये पूरा अंश उन्होंने आत्मधर्म में से यहाँ लिखा है। अब 6 नंबर के श्लोक पढ़ने के पहले अभी हम आत्मभावना पुस्तक पर चलते हैं।
जो अंतरात्मा है,
हाँ हाँ होते हैं, उत्तम वाले के नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो 12वें गुणस्थान वाला लिया। हाँ अभिप्राय ठीक है, हाँ ना 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 ना, देखिए आपका बहुत अच्छा सही प्रश्न है कि अंतरात्मा होने पर भी कोई चौथे वाला है, कोई पांच वाले छठे है, अभी 7वें 8वें की भी बात करो तो उनके भी कुछ शुभभाव है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इनका प्रश्न है कि उससे कुछ संवर वगैरह होता है क्या, निर्जरा होती है क्या, जितना शुभ भाव है उससे बंध ही होता ही लगा लो, बिल्कुल। देखो देखो ये जो आपने सही पूछा, समय सार में ही कहा है, आचार्य ही कहते कि समय दर्शन हुआ तो उसको बंध नहीं होता, बंध नहीं होता यानी वो अनंतानुबंधी वाला बंध नहीं होता, टोटली बंध नहीं होता ऐसा नहीं है, बंद है उसको, अगर बंद नहीं होगा तो डायरेक्ट अरिहंत दशा ही प्राप्त हो जाएगी। समझ में आती बात,
पूर्ण वितरकता हो जाएगी उसी समय, अगर हम बंद नहीं होता है मानेंगे तो उसको पूर्ण वितरकता हो गई, तो बीच वाले जो कोई
12वें 11वें 12वें 13वें वाले को साता वेदियां भी बंद रही है, उनके तो कषाय भी नहीं है। नहीं देखो, क्रिया से कोई बंध नहीं है, भावों से बंध है, क्रिया जो है शरीर की क्रिया उससे बिल्कुल बंध होता है क्योंकि वो तो परद्रव्य की क्रिया है, परंतु उसके पीछे जीव के जो भाव है कि मैं अमुक क्रिया करूं, मैं भगवान की पूजा करूं, वंदना करूं, मैं यात्रा करूं, मैं दान देऊं, मैं व्रत पालन करूं, ये उसके भाव हुए, इसको शुभ भाव कहा। वो बाहर में जो क्रिया की उसने वो शरीर की हुई, एट अ टाइम तीन बातें हो रही है, ये जानने में आ रहे कि इन्हें क्या भाव हो रहे हैं, यानी मुनिराज है, सच्चे मुनिराज है, उनकी बात करें भावलिंगी मुनिराज है, उनको अभी ये जो हम यहाँ देख रहे हैं पूज्यपाद आचार्य, उनको ये शास्त्र लिखने का राग भाव हुआ, ये उनका शुभ भाव है, वो जान रहे हैं, शुद्ध भाव तो है उनका, जितना वितरागता वहां पर पड़ी है, ये राग भाव भी हो रहा है और वो लिखने की क्रिया हो रही है। अब इससे आप देखो तो इससे बंध कौन से बात किससे बंध होगा, ये तीन में से बंध किससे हो रहा है, किस कारण? हाँ, ये समझाने का राग है वो बंध का, वो भले पुण्य भाव है, मंद कषाय का भाव है, उत्कृष्ट वाला भाव है, वो स्वर्गाधिक का वो सब बंद कर रहे, ऐसी ऐसी प्रकृतियां बंधेगी कि फल बहुत, जिसको हम लौकिक में कहेंगे कि जो संयोग की अपेक्षा उसका फल मिलेगा, परंतु फल मिलेगा इन्हें संसार में रूलेगा कि मोक्ष चला जाएगा उससे, ख्याल में? जितना राग है वो बंध का ही कारण है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उपाय एक अमृत चंद्राचार्य ने लिखा हुआ शास्त्र, उसमें तीन गाथाएं हैं, उसमें ऐसे लिखे जितने अंश में ज्ञान है उससे बंध नहीं है। अभी हम मुनिराज की बात करें, जितना ज्ञान है उससे बंध नहीं है, पर जितने अंश में राग है उससे बंध है। दूसरी गाथा में बताया जितने अंश में श्रद्धान है उससे बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उससे बंध है। तीसरे गाथे में जितने अंश में चारित्र है, चारित्र ने वितरागता है उससे बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उससे बंध है। यानी बारंबार यही कहे कि जितने अंश में राग है उतना वो बंध का कारण है। अब मुनिराजों को तो तीन कषाय ने अनंतानुबंधी नहीं है और प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, और वितरागता कितनी तो उनको सकल चारित्र है, सकल संयम है, इतनी उनकी वितरागता है, तो वो तो शुद्ध भाव है, उससे तो बंध बिल्कुल नहीं है। उनका जो संज्वलन कषाय चल रहा है ना उससे बंध है, जिसको हम कहेंगे ना मंद कषाय, परंतु बंध उसको अगर नहीं मानेंगे वहां पर, इतनी क्या बात, जब शुद्ध उपयोग में है तब भी बंध है, वहां राग यानी उनके बुद्धिपूर्वक यानी उनके ख्याल में नहीं आ रहा है कि हाँ ये अमुक राग चल रहा है, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक कहते हैं, क्योंकि दसवें तक राग विद्यमान है, तो दसवें गुणस्थान में भी ज्ञानावरण की पांचों बंध रही है, दर्शनावरण की चार बंध रही है, अंतराय की पांचों बंध रही है, इतनी तो बंध ही रही है ना, यशस कीर्ति बंध रही है, उच्च गोत्र बंध रहा है, ये जो सारी प्रकृतियां वहां बंध रही है, सातावेदनीय बंध रहा है, तो दसवें गुणस्थान में भी इतनी सारी प्रकृतियां बंध रही है, ख्याल में आई बात? तो जितने अंश में राग है, अभी दसवें तक सूक्ष्म लोभ है तो राग है तो उतना बंध है, ग्यारहवें में बारहवें में चला गया, अभी वहां राग बिल्कुल नहीं रहा, अकषाय भाव हो गया, पूर्ण वितरागता है, तो वहां योग है तो एक समय वाला सातावेदनी आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, उसको तो कहीं कहीं बंध में भी गिना नहीं है, जैसे स्थिति बंध अनुभाग बंध में उसको गिनते भी नहीं है, क्योंकि वहां ना स्थिति है ना अनुभाग है, ख्याल में आई ना बात? तो जो मुनिराजों का भी जो सम्यक दृष्टि का, हम किसी विशिष्ट व्यक्ति की या कोई गुणस्थान की बात नहीं करेंगे, जो सम्यक दृष्टि है जितने अंश में राग है उससे बंध है, तो क्या राग करना छोड़ दे? वो तो आता है, वो उसका कर्ता बनकर नहीं कर रहा है। मिथ्या दृष्टि को प्रश्न में करूं कि नहीं करूं, मैं अशुभ के बदले में शुभ करूं तो अच्छा है, यानी वो उसका कर्ता होकर उसको करना चाहता है, यही पर कहीं ना कहीं वो अभिप्राय में उसकी भूल है, करना के नहीं करना का सवाल ही नहीं है, वो जो हो रहा है वो अपने से भिन्न जानना, ये मुख्य बात है। राग हो रहा है वो अपने ज्ञान से हम जान भी रहे अपने में कौन से कषाय हो रहे हैं, हम उनसे भिन्न है, ये मुख्य उपदेश है। अन्य मति कहो या जैनियों में भी पहले कैसा उपदेश है, अरे राग कम करो, कर्मों को काटो और राग को, आपके हाथ में है तो बिल्कुल मत करो ना, पूर्ण वितरागी हो जाओ, राग को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कर सकते तो पूर्ण वितरागी हो जाओ ना, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो कि कोई बात नहीं करेगा, कम करो की बात करता है, यानी उसका स्वामी होकर कंट्रोलर बन रहा है। अभी हम यहाँ आते हैं आत्म, हाँ आप कुछ बोल नहीं?
वैसे देखा जाए तो क्या नाम समय सार में भी राग को पुद्गल का कहा है। अब उसको हटा दो, वो विभाव भाव है, ये तो निश्चित है ना। तो क्या यह जीव विभाव भाव का कर्ता हो सकता है क्या? तो हम उसे कम कैसा करेंगे? यानी ये जो ऐसा उपदेश देते हैं वो क्या करते हैं समझ लेना। अभी क्या बोलना किसके बारे में, क्योंकि हम तो किसी का कुछ ये नहीं बता कह सकेंगे। लेकिन ये तो निश्चित है ना कि जीव स्वभाव भाव का करता है, ये समय सार में शुरू से लेकर आखिर तक बताए। केवल कुंदकुंदा आचार्य ने बताए यहाँ से नहीं, वो देख के अमृतचंद्राचार्य को भी ऐसा लगा कि उन्होंने भी उसके ऊपर परिशिष्ट लिख डाले आखिर के जो 14 गाथाएं हैं। यानी यहाँ एक निश्चित है कि विभाव भाव का जीव
जरा सुनाई नहीं दे रहा,
विभाव भाव का करता
वो दूसरा माइक जरा आवाज कम है उसकी।
विभाव भाव का करता यह जीव नहीं है, ये नक्की करें पहले।
उन्होंने यही बात बताई कि विभाव भाव का करता जीव नहीं है, ये उसका करता होता तो कायम करता रहता, ये कहना चाहते हैं।
हमने ये देखा है, ये तो आवाज कि बार बार हमको यही बताया जाता है लोगों के द्वारा कि कषाय कम करो, पर कषाय कम करने की अपने में योग्यता ही नहीं है, ये बात है। चलो आगे आ गए, आप बढ़ो। आगे बढ़ो।
हाँ देखो, अभी हम आए हैं आत्मभावना पुस्तक में, 22 नंबर का हाँ साधक को पंचेंद्रिय विषयों संस्कार है, हाँ यानी उसमें से सुख प्राप्त होता है ऐसे तो उसके नहीं है, परंतु उसके अभी जिसको हम कहीं ना आदत बनी है ना उसको भी विषयों के इसमें से अभी भी अभी उसके बारंबार उसमें उसका मन लगता है कि उपयोग चला जाता है ये के उसको। हाँ वहाँ संस्कार है वो ज्ञान के पर्याय नहीं लेना है, संस्कार है वो तो बारंबार उसी के हाँ आगे बहिरात्मा अंतरा ये फिर दोबारा हम 5वें नंबर को इसमें से पढ़ रहे हैं। हवे बहिरात्मापणू छोड़ी ने अंतरात्मा थई ने परमात्मापणु प्रकट करवा माटे शिष्य पूछे छे के, क्योंकि वहां पहले 4थी गाथा में ये बात बताई थी कि परमात्मा होने का उपाय क्या है तो अंतरात्मा हो, बहिरात्मापन छोड़ने का वो क्या उपाय है अंतरात्मा हो जाओ। तो कहते हैं कि ये त्रणेनु लक्षण शू छे कि आप कह रहे हैं उनका लक्षण तो बताओ। तो यहाँ 5वीं गाथा अभी हमने जो सूत्र श्लोक पढ़ा था, बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः। शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्मानी भ्रांति जे करे छे ते बहिरात्मा छे, भात्मी ने उसको आत्मा मानने रूप भूल कर रहा है, अने राग द्वेषादि दोष तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा तेमना संबंध में जे भ्रांति थी रहित छे ते अंतरात्मा छे। विभ्रांति का ना ये समझे, स्वभाव और विभाव, विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। ऐसे भ्रांति से विपरीत क्या है, भ्रांति नहीं होना, भ्रांति निकल जाना, विभ्रांति। जे रागादि दोष ने दोष रूपे जाने छे ने पोताना चैतन्य स्वभाव ने स्वभाव रूपे जाने छे, यानी देखो अपने में ये पर्याय में हो रहे है, राग द्वेष भी हो रहा है और ज्ञान हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव और ये जो प्रभाव कहो या विभाव भाव इसमें से भेद को जान रहा, राग को राग रूप से जान रहा है, दोष को दोष रूप स्वीकार है और चैतन्य को चैतन्य रूप स्वीकार करता है। यहाँ लिखा ना रागादि दोष ने दोष रूपे जाने छे ने पोताना चैतन्य स्वभाव ने स्वभाव रूपे जाने छे। अपने में हो रहे हैं परंतु वो दोष है ये नक्की कर रहे हैं। देखो शरीर में कोई रोग होता है तो वो शरीर का अंग समझकर हम उस चलते हैं कि वो कुछ गलत बात है, रोग है, निकालने जैसा है तो हम उसका इलाज करते हैं। ये तो नक्की करते हैं ना पहले कि ये तो दोष है और वो निकाल बाहर करने लायक है, ये पहले नक्की हो जाता है। ऐसे यहाँ कहते हैं अभी रागादि हो रहे हैं, अभी उसके ज्ञान में भी आ रहे हैं परंतु उसको दोष है, इतना अपराध है ये स्वीकार कर रहा है। ने पोताना चैतन्य स्वभाव ने स्वभाव रूपे जाने छे जेने रागादिमा आत्मानी भ्रांति थती नथी। रोग में कभी हमारे ये मेरा शरीर मेरा ही अंग है ऐसा कभी भ्रांति नहीं होती है, क्यों होती है क्या? वो बिल्कुल इतना स्याना है क्योंकि शरीर में मैं हूं मान लिया ना, तो शरीर के जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें थोड़ी जो कुछ विपरीत बात हो जाती है हाँ तो पहले में पहले उसका इलाज शुरू करता है हाँ, कुछ भी, और इलाज के लिए पैसे पहले जमा करता है इनके पास हाँ। हार्ट में जो है ब्लॉक हो जाएगा तो निकालना का रखना है हाँ? किसको रिस्क देखेगा पड़ा भी रहना है, वो मरण के भय से पड़ा रहने देता है हाँ? और निकालता भी है वो मरण के भय से ही निकालता है उसमें डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन से किससे मरना अच्छा है, ब्लॉक रखकर मरना अच्छा है।
गुठली में अहम बुद्धि नहीं है, शरीर में अहम बुद्धि है, उसकी रॉकेट में तो उसकी अहम बुद्धि है ही नहीं, शरीर में अहम बुद्धि है, उसको रखता नहीं उसका।
अभी वो तो अंदर दिखाई नहीं देता है, पता नहीं लगता है वो डॉक्टर की बात हाँ। अभी यहाँ कोई फोड़ी आ जाओ मान लेते कैंसर जैसा गांठ हो जाते तो वो उसका अंग समझ कर रखते हैं क्या? पहले में पहले उसका इलाज करें। अभी तो हमारी आंखों से भी दिखता नहीं है, वो डॉक्टर ने वो तो उसका कुछ टिश्यू निकाल के नक्की कर दिया कैंसर है, तो फिर वो भी निकाल देगा और फिर उस पर और क्या क्या कीमोथेरेपी और डीप एक्सरे क्या क्या लेगा, उसमें होता है कि नहीं ऐसा? वो लेना के लेने इसकी बात नहीं चल रही है, ये तो उदाहरण की बात चल रही है। जैसे उसको हमने अपना अंग नहीं माना है और उसको निकाल बाहर करते हैं, वैसे यहाँ रागादि दोष ने दोष रूपे जाने छे। वो मेरा स्वभाव में उसकी कोई एंट्री नहीं है, वो मेरे स्वभाव से बाहर भाव है, बाह्य भाव है, मेरे से वो अलग जुदे है, रखने लायक नहीं है, यही बंद के कारण है और उसे संसार में घूमना हो रहा है। इसको कभी हमने रोग रूप माना ही नहीं ना, दोष रूप माना ही नहीं। ये पुण्य हो रहा है दोष रूप हो रहा है क्या? हम यात्रा करेंगे दोष लगता है क्या? साध है इसमें ऐसा लगता है कि अरे मैं कहाँ अटका हूँ और स्वरूप में क्यों नहीं जा रहा, बात तो रागादि दोष ने दोष रूपे जाने छे ने पोताना चैतन्य स्वभाव ने स्वभाव रूपे जाने छे जेने रागादि मा आत्मानी भ्रांति थती नथी। देखो राग को राग, अरे बाप रे समय हो गया, कल इसकी बात है। यानी राग को राग को आत्मा का स्वरूप नहीं जान रहा, वो आत्मा के स्वभाव में उसको एंट्री नहीं है, वो बाहरी भाव है उसका। कल चर्चा करेंगे ज्यादा उसकी। जवानी के ज्ञान ते तुझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मिली भाई।